हाल ही में आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और ईस्ट एशिया शिखर वार्ता लाओस की राजधानी वियंटियन में हुई। इस दौरान भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस जैसे देशों के नेता भी वहां पहुंचे। इस दौरान अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने द हेग में साउथ चाइना सी पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा दिए गए फैसले के संबंध में कहा,
With respect to maritime issues, we'll continue to work to ensure that disputes are resolved peacefully, including in the South China Sea. The landmark arbitration ruling in July, which is binding, helped clarify maritime rights in the region.
वहीं लाओस पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने कहा कि वो चाहते हैं कि इंटेलिजेंस शेयरिंग या खुफिया जानकारी साझा करने के संबंध में ज्यादा सहयोग होना चाहिए।
We know that ISIL wants to expand its presence in Southeast Asia, and this is of concern to us all. The latest ISIL propaganda is further evidence that as it faces increased pressure in Syria and Iraq, it will attempt to seed fear and division in our communities. Our updated joint declaration is a significant signal of collective political will to share our expertise and stay ahead of this evolving threat.
तो आसियान में क्षेत्र में आतंकवाद से जूझने के लिए सहयोग भी एजेंडे पर था। इस विषय पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलते हुए कहा,
इन द फेस ऑफ ग्रोइंग ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन इज ए की इमर्जिंग पिलर ऑफ अवर रिलेशनशिप राइजिंग एक्सपोर्ट ऑफ टेरर ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन थ्रू आइडियोलॉजी ऑफ हाइट्रेट and spread of extreme violence define the landscape of common security threats to our societies. The threat is local, regional and transnational at the same time. Our partnership with ASEAN seeks to craft a response that relies on coordination, cooperation.
तो आसियान और ईस्ट एशिया शिखर वार्ता के बारे में और जानकारी के लिए हमने JNU में सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक स्टडीज की अध्यक्ष प्रोफेसर शंकरी सुंदर रमन से बात की।
अगर आप देखेंगे इंडिया का रोल इस मल्टीलैटरल फोरम में रहना काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आज का जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसमें इंडिया को अपने लाइक माइंडेड नॉर्मेटिव पावर्स के साथ देना काफी क्रिटिकल रहेगा। तो जहां तक अभी के जो करंट समिट हुआ है इसके मुद्दों की जहां तक उसकी मुद्दों की बात है, आई थिंक सम ऑफ द की टेकअवेज आर दैट ऑन द इशू ऑफ मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड द क्वेश्चन ऑफ साउथ चाइना सी आई वुड से देयर हैज बीन अ रादर लूकवॉर्म अप्रोच टू द इशू, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं जून में जो रूलिंग हुई थी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से, उस रूलिंग के हिसाब से चाइना को काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ा था, परंतु उसके बावजूद हम यह देख रहे हैं कि अभी जो ईस्ट एशिया समिट में हुआ है चाइना के प्रति कोई भी कठोर स्टेटमेंट नहीं निकला है इस टाइम पे। ये काफी सेंसिटिव इश्यू है क्योंकि कई आसियान स्टेट चाइना से बहुत नजदीक संबंध रखते हैं और वो स्टेट नहीं चाहते हैं कि चाइना और उनके रिश्तों में कोई भी नेगेटिव प्रकार के प्रभाव पड़े। So as a result of it, the kind of lukewarm response that you have seen on the case of the summit currently and the kind of responses that have come to the PCA arbitration, you see that this has actually become quite diluted in that sense.
Ji.
Jahan tak India ka contribution hai, I think one of the key points that India's Prime Minister has raised is the question of states in our neighborhood exporting terror. I think this has been one of the bold initiatives to actually remark on how states are using terror to subvert other states. Mm-hmm. So I think bilaterally, when you also look at the fact that the Prime Minister has had several meetings on the sidelines of the summit with individual leaders, it is going to give an added kind of boost to the India-ASEAN ties, both economically and strategically, because mm-hmm. we are now expanding both strategically also with them under the arena of the Act East policy. So in that sense, I think the summit and its takeaways will remain important, but the negative impact has been that China has been let off scot-free and there has been no impact on the South China Sea verdict.
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हालांकि कुछ इस तरह की बात कही है कि जो फैसला आया था उसको उसका सम्मान करना चाहिए, उसका क्या सिग्निफिकेंस है?
वेल, जहां तक ऑस्ट्रेलिया की जो पोजीशन है साउथ चाइना सी पर, ये तो इसमें अगर आप देखोगे इसमें काफी क्लियर हमको ये दिखता है कि ऑस्ट्रेलिया हैज टेकन अ पोजीशन इन सपोर्ट ऑफ द यूएस पोजीशन. ओके, नाउ आई विल नॉट वेंचर टू से दैट दिस इज इन सपोर्ट ऑफ द यूएस पोजीशन, बट दिस इज इन सपोर्ट ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ पैसेज एज वेल एज द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. ओके, सो फॉर दैट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया पोजीशन हैज बीन वेरी क्लियर. नाउ व्हेन यू नाउ ऑस्ट्रेलिया की बात जहां तक है, अगर आप देखोगे दैट इमीडिएटली आफ्टर द आर्बिट्रेशन केम आउट, द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया था. इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये दो चीजें कहे गए थे कि वन वॉज कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और राइट ऑफ पैसेज है वो तो सैक्रोसैंक्ट है जहां तक साउथ चाइना सी के इशू कंसर्न, द इशू ऑफ साउथ चाइना सी वॉज कंसर्न. Now, उसके अलावा जो पोजीशन इन्होंने लिया था, जो चाइना ने एट दैट पॉइंट इट हैड डिसाइडेड दैट इट मे इवन इन्वोक द एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन एज फार एज द साउथ चाइना सी वाज कंसर्न, एट विच टाइम ऑस्ट्रेलिया और जापान ने ये किया था, ये बोला था कि इस पर जो चर्चा हो रहा था उसको लेके ये तीनों देशों ने एक साथ एक स्टैंड लिया था अगेंस्ट साउथ, अगेंस्ट चाइनाज रोल and China's position vis-a-vis South China Sea. Now, इसपे चीन का काफी strong reactions था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो पोजिशन थी वो यूएस रोल के साथ जुड़ा हुआ है. ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड तो यही रहेगा कि इट इज गोइंग टू रिमेन विद द यूनाइटेड स्टेट्स एज फार एज दिस पोजिशन इज कंसर्न.
जी, एक आखिरी सवाल प्रोफेसर शंकरी आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर राष्ट्रपति ओबामा से भी मुलाकात हुई है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये उनकी आठवीं मुलाकात थी पिछले दो सालों में, तो सब चीजों के मद्देनजर हाउ डू यू सी इट?
सी, इफ यू रियली लुक एट इट, इट्स लाइक यू सेड, इट्स द एइथ मीटिंग इन द लास्ट टू इयर्स, बट देन यू नो दिस इज नॉट अ मीटिंग दैट इज वन ऑन वन समिट लेवल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. इट्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ईएएस. And given that, you know, the U.S. is already in election mode, I think this will be seen as President Obama's final few months in office, okay? Now, I think the meeting basically signals a continued move forward on the Indo-U.S. strategic partnership. And there are three clear factors that come out in this. One is the U.S. continued support for India's entry into the nuclear suppliers group. You also see that climate change has been very, very critical on the agenda. And whatever decisions were taken in the Paris summit have been, you know, there is an effort by both India and the United States to push the climate change agenda forward. And also, if you look at it, I think, again, it signals the fact that U.S. has been supporting India vis-a-vis the terrorism issue that has been happening regionally in South Asia. So these are, I think, the critical takeaways from there. But this is not different from any of the statements that have come out from either President Obama or Prime Minister Modi in terms of where they see India-U.S. relations moving over the next couple of years.